नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और आज की हमारी मेहमान हैं जानी मानी खेल पत्रकार मोना पाटसारथी। स्वागत आपका।
धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
जब भारत की पहली पारी 224 रन पर सिमटी थी तो लग रहा था कि क्या होने वाला है इस टेस्ट मैच में, और उसके बाद जैसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इंग्लैंड की तरफ से शुरू हुई थी।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरे सत्र में जिस तरह से भारत ने वापसी की है, वाकई में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन।
हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंचा। इम्फाल में डूरंड कप फुटबॉल के ग्रुप एफ के मैच में इंडियन नेवी फुटबॉल टीम ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को हराया। लक्ष्यन और तरुण मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे और भारतीय पुरुष तथा महिला टेबल टेनिस टीमों ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। तो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से ही, क्योंकि ओवल में भारत के साथ पांचवें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेजबान इंग्लैंड ने पहली पारी में चाय के विश्राम तक 7 विकेट पर 215 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की टीम 224 रन बनाकर आउट हो गई। करुण नायर ने सबसे अधिक 57 रन बनाए। वाशिंगटन सुंदर 26 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड के लिए गस एटकिंसन ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए। और अगर हम भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जो 7 विकेट गिरे हैं उसमें से प्रसिद्ध कृष्णा के नाम 3 विकेट, सिराज के नाम 3 विकेट और आकाशदीप के नाम 1 विकेट। एक समय जब बेसबॉल क्रिकेट के अंदाज में शुरुआत हुई थी इंग्लैंड की टीम की, लग रहा था कि ये 224 रन काफी छोटा साबित होने वाला है।
बिल्कुल।
लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने और भारतीय कप्तान ने एक रणनीति के तहत उस इंग्लैंड की रणनीति को तोड़ा।
बिल्कुल, उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। जिस तरह से इंग्लैंड बल्लेबाजी कर रहा था, 5 से ऊपर के रन रेट से रन बन रहे थे, जैसे वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, और बेसबॉल की जैसे आपने बात की आक्रामक बल्लेबाजी। लेकिन मुझे लगता है कि यही रणनीति कहीं ना कहीं इंग्लैंड पे भारी पड़ गई और विकेट गिरते रहे। पहला विकेट जब 92 रन पे गिरा और जिस तरह से क्रॉले और डकेट ने शुरुआत की थी, उस समय ऐसे लग रहा था कि ये भारतीय गेंदबाज, जिसमें बुमराह भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, तो कैसे ये रोक पाएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। लेकिन तारीफ करनी होगी खासतौर पे मोहम्मद सिराज की। करीब करीब 150 ओवर फेंक चुके हैं वो अभी तक, और नेट में भी काफी गेंदबाजी की है उन्होंने। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से जोश के साथ वो गेंदबाजी कर रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा की काफी सवाल उठ रहे थे कि अर्शदीप सिंह को खिलाना चाहिए था। जिस तरह से सीम मिल रही है गेंदबाजों को, और अर्शदीप तो माहिर है, धुरंधर है उसमें, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने भी कुछ बहुत ही जबरदस्त गेंदें डाली है और परेशान किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। हालांकि शुरुआत में लग रहा था, जैसे कि आपने कहा, कि इंग्लैंड बिल्कुल भारत को बड़ी बढ़त लेकर शायद दूसरी बार बल्लेबाजी करने भी ना उसे आना पड़े, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही रणनीति उनकी रही होगी। लेकिन यहाँ भारतीय गेंदबाजों ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।
जी बिल्कुल, आज जैसी गेंदबाजी हुई है वो तो कमाल की गेंदबाजी रही है, और रणनीति जो है इंग्लैंड की उसी में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम फंसती हुई नजर आ रही है। और अगर वास्तविक तौर पर कहें तो भारत को सिर्फ और 2 विकेट चाहिए, क्योंकि 7 विकेट गिरे हैं
जी,
2 विकेट और गिरेंगे 9 विकेट हो जाएंगे। वोक्स चोटिल हैं, इस मैच में खेलेंगे नहीं, तो बैकफुट पर इस समय आपको लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम है?
निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर है, क्योंकि आप देखिए उसके प्रमुख गेंदबाज नहीं है, और भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में, हालांकि एक करुण नायर और वाशिंगटन सुंदर की साझेदारी को अगर हम अलग कर दें, तो भारतीय बल्लेबाज बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शुभमन गिल जिस फॉर्म में है, एक पारी में वो नाकाम हो सकते हैं लेकिन वापसी करेंगे। केएल राहुल जबरदस्त फॉर्म में है, तो भारतीय शीर्ष क्रम से हम उम्मीद करेंगे कि, क्योंकि इंग्लैंड की टीम उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले 4 मैचों में थी, तो यहाँ भारतीय बल्लेबाजों की रणनीति यही होना चाहिए। आज दूसरा ही दिन है खेल का, तो एक बहुत बड़ा स्कोर, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के जो पारी है वो अभी सिमट जाएगी कुछ ओवरों में ही। भारत के पास आखिरी सत्र के कुछ ओवर होंगे, और उसके बाद जब कल शुरुआत होगी, कल तीसरा ही दिन है, तो एक बड़ा स्कोर अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे हैं, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी भारत के पास है, और ये निर्णायक टेस्ट है, तो गौतम गंभीर कोच खास तौर पे, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही है, वो जरूर यहाँ कोशिश करेंगे कि श्रृंखला का जो निर्णायक टेस्ट है परिणाम अनुकूल हो।
लेकिन एक कप्तान के तौर पर तो आज शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से, उन्होंने विकेट कीपर को आगे बुलाया और उसके बाद गेंदें ऐसी डलवाई कि बल्लेबाज खुलकर आगे निकलकर बल्लेबाजी न कर सके, यहां पर रणनीति और उसके अनुसार फील्डिंग।
बिल्कुल, आज उन्होंने परिचय दिया। जब आपको याद होगा जब उन्हें टेस्ट कप्तान बनाया गया तो काफी ये बातें हुई थी कि काफी युवा हैं और बहुत जल्दी उनको ये जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन जो क्रिकेट की समझ और जो परिपक्वता उन्होंने आज कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्लैशेस उनके महेंद्र सिंह धोनी के नजर आ रहे थे, जो उनकी डिसीजन मेकिंग हो रही थी मैदान पर, तो वाकई बहुत अच्छी बल्लेबाजी में भले ही वो इस मैच में पहली पारी में नहीं चल पाए, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्होंने दिखाया कि नहीं, जो खेल की समझ है जो शायद किसी कप्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी है, वो उनमें कूट कूट कर है भरी।
और इस बीच खबर यह है कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स गंधे की चोट के कारण भारत के खिलाफ चल रहे पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच से बाहर हो गए। कल मैच के पहले दिन करुण नायर के शॉट पर बाउंड्री बचाने के प्रयास में वोक्स चोटिल हो गए थे और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था। वोक्स ने मौजूदा टेस्ट में अब तक 14 ओवर गेंदबाजी की और 46 रन देकर केएल राहुल का महत्वपूर्ण विकेट लिया था। इधर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला में तीन टेस्ट का कोटा पूरा करने के बाद शुक्रवार को यानी आज टीम से रिलीज कर दिया गया। इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर 31 वर्षीय बुमराह ने तीन मैचों में 119.4 ओवर फेंके और 14 विकेट लिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज बताया कि जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पांचवें टेस्ट के लिए भारतीय टीम से रिलीज कर दिया गया है। खबर क्रिकेट से एक और यह है कि शार्दुल ठाकुर को दलीप ट्रॉफी क्रिकेट के लिए पश्चिम क्षेत्र की टीम का कप्तान बनाया गया। पश्चिम क्षेत्र की टीम टूर्नामेंट में अपने मैच सितंबर में खेलेगी। पश्चिम क्षेत्र की 15 सदस्यीय टीम में यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, श्रेयस अय्यर और उनके समेत मुंबई के कुल 7 खिलाड़ी शामिल हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में शामिल हैं। और अब बात फुटबॉल की। मणिपुर के इंफाल में आज 134वें डूरंड कप फुटबॉल के ग्रुप एफ के मैच में इंडियन नेवी फुटबॉल टीम ने रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को हरा दिया। हमारे इंफाल संवाददाता जेजे थॉकचॉम ने बताया कि इंडियन नेवी की रियल कश्मीर पर 2-1 जीत टूर्नामेंट में एक उलटफेर है।
मैच शुरू होने से पहले युवा खिलाड़ियों से भरी रियल कश्मीर टीम को मुकाबले में फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो एक हैरत अंगेज हार उसके खाते से जुड़ गई। पूरे मैच में अनुभवी खिलाड़ियों से भरी इंडियन नेवी ने लाजवाब फुटबॉल का प्रदर्शन किया। उसका आक्रमण न केवल अधिक क्लिनिकल था बल्कि डिफेंस भी चट्टान की तरह मजबूत रहा। मैच की शुरुआत में 6 मिनट में ही विजय मरांडी ने लाजवाब गोल के जरिए इंडियन नेवी को आगे कर दिया। इस बढ़त को उसने हाफ टाइम तक बरकरार रखा। गेंद पर ज्यादा पोजीशन और हर मुमकिन कोशिश के बाद भी रियल कश्मीर के खिलाड़ी पहले हाफ में उसकी डिफेंस को भेद नहीं पाए। दूसरे हाफ में भी बराबरी के लिए कश्मीर की जद्दोजहद जारी रही। आखिरकार फ्रैंक विलियम ने 64वें मिनट में कश्मीर के लिए गोल करने में सफलता हासिल की। मैच बराबरी पर जरूर था, लेकिन आगे निकलने की होड़ दोनों ओर से जारी थी। आखिरकार 6 मिनट बाद ही इंडियन नेवी के श्रेयस विजी को मौका मिला और उन्होंने रियल कश्मीर के पोस्ट में एक और गोल उतार दिया। एक बार फिर इंडियन नेवी की टीम बढ़त पर थी। उसने अंत तक इस लीड को बनाए रखा और इस वर्ष के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया। ड्यूरंड कप में 2021 के बाद से ये इंडियन नेवी की पहली जीत है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो ये कमाल का फुटबॉल मैच था, क्योंकि कश्मीर की अगर बात करें तो मैदान में उतरने से पहले ही उसको विजेता की तरह माना जा रहा था।
बिल्कुल, काफी मजबूत टीम है रियल कश्मीर और काफी युवा खिलाड़ी इसमें हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता का शिकार हुई टीम, क्योंकि नौसेना के खिलाफ मुकाबले को बेमेल माना जा रहा था और इसी का फायदा शायद नेवी की टीम ने उठाया और जिस तरीके से गोल किए हैं, न तो रियल कश्मीर का डिफेंस अच्छा था न उनका आक्रमण अच्छा था, कई मूव बने और गोल में तब्दील नहीं हो पाए, तो ये एक बहुत बड़ा ही उलटफेर वाकई।
फुटबॉल से एक और खबर है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF ने खालिद जमील को भारत की टीम का नया कोच नियुक्त किया है। AIFF ने आज इसका ऐलान किया। खालिद ने 2017 में आइजोल फुटबॉल क्लब को आई लीग खिताब दिलाया था। 13 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय को टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को आप कैसे देख रही हैं?
बहुत ही एक मैं कहूंगी कि अच्छा ही फैसला है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में भारतीय फुटबॉल का प्रदर्शन ग्राफ रहा है, काफी खराब प्रदर्शन रहा है, हांगकांग जैसी टीम से हम जून में हार गए और एक नई शुरुआत की जरूरत थी, और जो बाकी दावेदार थे तीन उनमें सबसे मजबूत नाम, क्योंकि आप देखिए जैसे आपने बताया आई लीग में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को खिताब दिलाया, इसके अलावा मोहन बगान ईस्ट बंगाल जैसी टीमों के कोच रह चुके हैं और अपेक्षाओं का वहां कितना दबाव होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आईएसएल में जमशेदपुर एफसी के कोच हैं, तो एक प्रूवन रिकॉर्ड है उनका, 48 साल के हैं, युवा हैं, बाईचुंग भूटिया के साथ फुटबॉल खेल चुके हैं, तो भारतीय फुटबॉल की अच्छी खासी और सिस्टम की अच्छी खासी समझ है उन्हें।
बैडमिंटन से खबर, लक्ष्य सेन और तरुण मन्नेपल्ली मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। मन्नेपल्ली ने क्वार्टर फाइनल में चीन के हू झे को, जबकि लक्ष्य ने चीन के ही शुआन यन झू को हराया। एक रिपोर्ट सुनते हैं।
विश्व में 47वें स्थान पर काबिज 23 वर्षीय मन्नेपल्ली ने 87वें स्थान पर काबिज चीन के हू झे को 75 मिनट तक चले मुकाबले में 21-12, 13-21, 21-18 से शिकस्त दी। मन्नेपल्ली ने पहली बार किसी BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वे फरवरी में जर्मन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। 4 साल पहले पुलेला गोपीचंद अकादमी से जुड़ने वाले मन्नेपल्ली ने पिछले दौर में हांगकांग के शीर्ष वरीयता प्राप्त ली चेउ क्यू को हराया था। अंतिम चार में मन्नेपल्ली की टक्कर मलेशिया के जस्टिन हो से होगी। वहीं राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने चीन के शुआन चेन झू को 21-14, 18-21, 21-14 से मात दी। लक्ष्य को विश्व रैंकिंग में 77वें स्थान पर काबिज चीन को हराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। अब लक्ष्य का सामना इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त अलवी फरहान से होगा। उधर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के चुंग होन जियान और हेकल मोहम्मद से 14-21, 21-13, 20-22 से हारकर बाहर हो गई। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
वैसे तो लक्ष्य भी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन मन्नेपल्ली जो एक उभरता हुआ नाम और भारतीय बैडमिंटन की जो एक मजबूत परंपरा है उसका वाहक आप मानती हैं?
बिल्कुल, 21 साल के हैं अभी, सिर्फ 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेल रहे हैं और 4 साल पहले हैदराबाद शिफ्ट होकर पुलेला गोपीचंद एकेडमी में है। काफी आप उनको खेलते हुए देखिए, इतना चुस्त चपल बैडमिंटन है और बेसिक्स पर भी उनका पूरा जबरदस्त फोकस है, तो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, खासतौर पे क्वार्टर फाइनल मैच में जिस तरह से उन्होंने टॉप सीडेड खिलाड़ी को हराया। इससे पहले जो नाम थे लक्ष्य सेन पर सबकी निगाहें थी, लेकिन तरुण ने जिस तरीके से पिछले मैच में खेला है काफी उम्मीदें उन्होंने यहाँ जगाई है और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऑल इंडिया फाइनल हमें यहाँ पर भी देखने को मिले बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, पेरिस ओलंपिक के बाद से वापसी की राह पर है, तो यहाँ कोई भी दोनों में से कोई भी खिताब जीते खिताब भारत की झोली में आना चाहिए
जी। और टेबल टेनिस से एक अच्छी खबर है, भारतीय पुरुष और महिला टेबल टेनिस टीमों ने काठमांडू में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके लंदन में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप WTTC के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिला और पुरुष वर्ग में 16 एशियाई कोटा स्थान उपलब्ध थे। मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया से 4 क्षेत्रीय चैंपियन इसके लिए सीधे क्वालिफाई करते हैं। भारतीय महिला और पुरुष टीमें 5 देशों के राउंड रॉबिन प्रारूप वाले दक्षिण एशियाई टूर्नामेंट में अपराजेय रहीं। पुरुष टीम में आकाश पाल, रोनित भांजा, अनिर्बाण घोष, PB अभिनंद और दिव्यांश श्रीवास्तव थे, जिन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव को 3-0 से हराया। महिला टीम में कृतिविका सिन्हा, एस सेल्वा कुमार, तनिषा कोटेचा, सयाली वानी और सिंड्रेल दास थी। उन्होंने इन्हीं 4 टीमों को इसी अंतर से मात दी। टेबल टेनिस में आमतौर पर ऐसी खबरें आती नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है,
बहुत ही अच्छी खबर है। और सारे नए खिलाड़ी हैं, आप देखिए इसमें जितने भी नाम है वो सब नए खिलाड़ियों के हैं और काफी प्रेस्टीजियस माना जाता है जिसके लिए क्वालिफाई किया है भारत ने, एज अ चैंपियन डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, ये बहुत बड़ी बात है।
और एक और खबर यह है कि पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का अनावरण किया। इसका आयोजन राजगीर में 9 और 10 अगस्त को किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में एशिया से महिला और पुरुष टीमें भाग लेंगी। पहली बार बिहार में इसका आयोजन होने जा रहा है। और घड़ी की सुइयां कह रही है कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। मोना स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।
शुक्रिया
दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.